कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय नौवां श्लोक आज है भाग क्रमांक 30। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता के ये पांच पहलू, जनन वर्णन वंदन सांत्वन और गमन। हम सांत्वन पर हैं। पिछली बार हमने सांत्वना, भगवान जब प्रार्थना स्वीकार करते हैं अपने भक्तों की, तो बदले में भगवान की ओर से जो आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं सांत्वन या सांत्वना। तो यहां पर हमने ये दो शब्द लिए थे, एश्योरेंस और इंश्योरेंस। भगवान न केवल आश्वासन देते हैं, जैसे कि गीता में उन्होंने कहा, कौन्ते प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। न केवल उन्होंने कहा बल्कि उन्होंने कर दिखाया। तो एक तरफ है हमारे स्वप्न, हमारी ख्वाहिशें, और दूसरी तरफ है भगवान की योजना हमारे लिए। तो हमने भगवान की योजना के तहत ये कुछ मुद्दे डिस्कस किए थे। कृष्णास प्लान ऑन अ कॉस्मिक लेवल, कृष्णास प्लान ऑन इंडिविजुअल लेवल, और ये 6 पॉइंट स्पिरिचुअल फॉर्मूला, भगवान किस प्रकार से इस भौतिक संसार में उनके योजना के तहत क्या क्या कर रहे हैं। अवतार, होली धाम, डीटी फॉर्म्स, महाप्रसाद, होली स्क्रिप्चर्स, आचार्य, गुरु, एक चीज हम भूल गए बहुत महत्वपूर्ण, भगवान का हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने ये कुछ उदाहरण लिए थे जहां भगवान ने अपनी सांत्वना दिखाई इन भक्तों की प्रार्थना के बदले। ब्रजवासियों ने जब प्रार्थना की तो गोवर्धन पर्वत के रूप में भगवान ने सांत्वना दी। द्रौपदी ने जब प्रार्थना की तो साड़ी के रूप में भगवान ने सांत्वना दी। गजेंद्र के लिए सुदर्शन चक्र के रूप में, प्रहलाद महाराज के लिए भगवान स्वयं नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। ध्रुव महाराज के लिए उन्हें ध्रुवलोक दिया। परीक्षित महाराज के लिए श्रीमद भागवत, अर्जुन उनके लिए भगवत गीता यथारूप। तो यहां हमारे लिए विशेष रूप से पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भगवान का ग्रंथ अवतार है, ग्रंथ अवतार का अर्थ है भगवान ग्रंथों के रूप में, जैसे यहां पर श्रीमद् भागवत और भगवद गीता। हम इतने वर्षों से क्या चर्चा कर रहे हैं, भगवान के ग्रंथ अवतार से चर्चा कर। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत विशेष रूप से, श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है हम कलयुगी जीवों के लिए, किस प्रकार से भगवान जब अपने धराधाम चले गए तो अपने धाम जाने के पश्चात या जाने से पहले ये कहें भगवान कलयुग के विषय में चिंता कर रहे थे, हमारे लिए चिंता कर रहे थे, और हमारे लिए चिंता करते हुए भगवान ने सोचा कि जब तक मैं अपने एक ऐसे रूप में नहीं आता, कौन से रूप में, जिस रूप के द्वारा कलयुग के जीव न केवल मुझे समझ सकें बल्कि औरों को समझा सकें। हरिनाम क्या है, जब हम समझते हैं भगवान को, जैसे कि हमने श्रवण और कीर्तन की विधि की चर्चा की थी कि श्रवण कीर्तन क्या है, भगवान से वार्तालाप, भगवान से हम जब कुछ कहते हैं वो है कीर्तन, भगवान से सुनते हैं, श्रवण करते हैं वो है श्रवण, हियरिंग। तो ये श्रीमद् भागवत को भगवान फिर छोड़कर गए, या भागवत के रूप में भगवान अवतरित हुए हम कलयुग जीवों के लिए। तो श्रीमद् भागवत के महात्म में बहुत ये प्रसिद्ध कथा है धुंधुकारी और गोकर्ण की। तो इसका संबंध हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से कलयुग जीवों के लिए क्या है इसका संबंध वो बताया। तो एक कथा प्रारंभ होती है, गोकर्ण जो कि भगवान के एक बहुत ही अनन्य भक्त हुए थे, गोकर्ण नाम की एक जगह भी है, तो गोकर्ण के पिता हुए, उनका नाम था आत्मदेव, एक बहुत वो प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, और एक ऐसे ब्राह्मण जो कि बहुत धनवान थे, जो कि बहुत दुर्लभ है धनवान ब्राह्मण होना। तो बहुत प्रसिद्ध और बहुत धनवान ये ब्राह्मण जिनका नाम आत्मदेव, परंतु होता है ना संसार में सब कुछ हो आपके पास, सब कुछ होने के पश्चात ये शब्द आता है परंतु, लेकिन। तो सब कुछ इनके पास, प्रसिद्धि, धन, विद्वत्ता, सुंदरता, सब कुछ, परंतु कोई संतान नहीं थी इन्हें, तो इन्हें एक पुत्र चाहिए था। तो बहुत वर्ष बीते, अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं, कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पा रहा, तो ये वन की ओर निकले आत्महत्या करने के लिए। इस हद तक उनकी दुर्दशा हो गई थी कि उन्होंने ठान लिया कि अब जीकर क्या फायदा। तो वन में उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी सन्यासी को देखा, और इस तेजस्वी सन्यासी को देखते ही उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं इन सन्यासी से मेरी इस कठिनाई को सुनाऊं, हो सकता है कि ये सन्यासी, इनके पास कोई उपाय हो। तो ये सन्यासी के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। तो वहां पर ये सन्यासी पूछते हैं कि भाई क्यों रो रहे हो, कौन है आप, तो अपना परिचय देते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। तो ये सन्यासी इन्हें देखकर कहते हैं कि तुम्हारे ललाट पर लिखा हुआ है ये जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों में तुम्हें कोई संतान प्राप्त नहीं होने वाले। तो कई बार सन्यासी जो होते हैं वो छिपाते नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज देते हैं। तो पहले से ही ये इस जन्म से परेशान, अब ये सन्यासी कह रहे हैं कि आने वाले और 7 जन्म आपको कोई संतान प्राप्त नहीं होने वाली। तो आत्मदेव ने सोचा, ब्राह्मण तो बुद्धि बहुत थी, तो आत्मदेव ने सोचा कि यदि ये सन्यासी मेरे ललाट को देखकर बोल सकते हैं कि अगले 7 जन्मों में क्या होने वाला है, तो अवश्य ही ये किसी न किसी तरीके से मुझे संतान भी दिला सकते हैं अवश्य। अब तो ये गिर गए, इनके चरणों में गिर गए कि मुझे किसी न किसी प्रकार से, ये न के न प्रकारेण मुझे आप संतान दिलाइए। तो फिर इन्होंने कहा, देखिए ये जो विधाता का लेख है इसमें आप हस्तक्षेप मत कीजिए और मुझे भी न करने दीजिए। फिर उन्होंने चित्रकेतु महाराज की कथा सुनाई कि कैसे चित्रकेतु महाराज, उनके साथ भी यही हुआ, जबरदस्ती उन्होंने अपने कालक्रम को बदलते हुए और अंगिरा मुनि उनसे उन्होंने पुत्र प्राप्त करवाया, परंतु हुआ क्या, हर्ष शोक इत्यादि। तो ये कहे, नहीं नहीं नहीं, मुझे वो सबसे कुछ लेना देना नहीं, मैं जानता हूं चित्रकेतु महाराज की कथा, मुझे चाहिए अभी, आप दिलाइए। तो इन्होंने कहा कि, और उसने ये कह दिया कि यदि आप नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुइसाइड नोट आपके नाम लिख दूंगा। आजकल आत्महत्या करने वाले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करके जाते हैं, तो पहले से चले आ रहा है। तो उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा और आपके नाम सब कुछ कर्म आएगा। तो अब ये सोचे कि भाई मैं अपना भजन कर रहा था एकांत में यहां वन में, और ये कहां से ये आत्मदेवी ब्राह्मण आ गया, लेने के देने पड़ रहे हैं यहां पे। तो फिर जबरदस्ती उनसे ये पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद ये मांग रहे हैं। तो ये साधु, इन्होंने एक फल दिया कि ठीक है ये फल आप लीजिए और आपकी जो धर्मपत्नी है उनको ये फल खिला दीजिए, तो आपको जो आपकी इच्छा है, मनोवांछित आपको जो पुत्र चाहिए वो प्राप्त हो जाए। तो इतना प्रसन्न ये गए, फल को संभालते हुए लेकर गए, अपनी पत्नी को शुभ समाचार दिया और पत्नी को फल देते हुए कहा कि ये बहुत ही एक प्रगत सन्यासी संत महात्मा उन्होंने दिया है, और मेरी याचना करने पर अब हमारे सारे दुख दूर होंगे, और ये फल को तुम खाओ और इससे खाने से तुम्हें अब पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अब इसके मन में विचार आने लगा, पत्नी के मन में विचार आने लगा कि यदि इस फल को खाने से, ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़े संत ने ये फल दिया है, तो फल को खाने से फिर मैं गर्भवती हो गई, तो 9 महीने तकलीफ होगी। उसके मन में ये सब विचार की, वो प्रसन्न हो रही थी कि इतने वर्षों तक कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई झंझट नहीं पालने पोसने की बच्चों को। तो उसने कह दिया, ऐसा कीजिए आप स्नान करके आइए और फिर तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूं, फिर हम देखते हैं इसको सही मुहूर्त पर खाएंगे। खाएंगे, तुम्हें खाना है? हाँ मुझे ही खाना है, लेकिन उसको सही तरीके से, इतना दिव्य फल है वो, है ये कितना शक्तिशाली ये फल होगा। तो ठीक है, वो गए। अब इसने बीच में क्या किया, इसने बीच में अपनी सहेली को बुलाया और सहेली से ये पूछने लगी कि अब मैं क्या करूं, ये फल लेकर आ गए और हो सकता है ये फल के अंदर वो शक्ति हो, वो जादू शक्ति हो, दिव्य शक्ति हो, परंतु मुझे तो गर्भवती नहीं होना है। हाँ, अच्छा खासा मेरा फिगर है खराब हो जाएगा, गर्भवती नहीं होना है, कारण दे रही हो एक एक करके, घर का काम कौन करेगा, पेट इतना आगे आ जाएगा, बेड़ंगा दिखूंगी मैं, नहीं होना है मुझे। और वो कारण देती है, यदि वो सुखदेव महाराज जैसा पुत्र हो गया, वो तो 16 साल अंदर ही रहा, क्या भरोसा बाहर नहीं आए, तो 16 साल वो इतने बड़े पेट को लेकर कौन घूमेगा। तो एक एक कर कर कारण, और फिर कई बार डकैत आ जाते हैं हमारे गांव में, तो डकैत आ गए तो फिर सब लोग भाग जाएंगे, मैं इतना बड़ा पेट लेकर कैसे भागूंगी। तो ऐसे करके उसने पूरा प्रेजेंटेशन आठ कारण दिए उसने। तो सहेली वो भी मान गई, वो भी सोचने लगी कि मैं क्यों फिर संतान पैदा की, उसको भी डाउट आने लग गया। इसको कहते हैं प्रीचिंग। तो अब इसने किया क्या, देखिए, इसका नाम था धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। तो इसने क्या किया, इसने वो फल गाय को खिला दिया कि चलो देखते हैं गाय को खिलाने से क्या होता है, मुझे तो खाना है नहीं ये, तो गाय को खिलाने से क्या होता है। अभी देखिए, जब दिमाग में इस प्रकार का कुपेड़ होता है किसी के कि जो सही उसके पति ने बताया वो नहीं किया, तो वो गाय गर्भवती हो गई, ये नहीं उसको पता चला कि सही में एक संत महात्मा ने दिया है तो क्या कुछ उसके अंदर शक्ति हो सकती है। अब ये आए तो ये आके पूछे कि चलो अब जो बताया था तो ये नहा धोकर आए, तो इसने कहा मैंने तो खा लिया। तो तुमने खा लिया? हाँ, मैंने सोचा कि अभी पता नहीं ये फल खराब हो जाए तो हो सकता है हमारा संतान अपाहिज पैदा हो, तो ये सड़ने से पहले मैंने मैंने उसे खा लिया, झूठ बोला पूरा। तो देखिए, वहां से पद्म पुराण में बताया गया है कि शुरुआत हुई उसके घर में कुसंस्कार की, कि जो उसे बताया गया था, जो आदेश उसे दिए गए थे उसके वरिष्ठों द्वारा, उन आदेशों का जब उसने पालन नहीं किया, उल्टा कपट झूठ का सहारा जब लिया। जैसे ऐसे ही एक महिला, उसको संतान नहीं हो रहा, तो वो भी एक साधु महात्मा के पास गई कि कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ विभूति दीजिए, कोई नुस्खा दीजिए, संतान नहीं हो रहा है। तो साधु महात्मा ने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप एक महीना सुबह एक रोटी गाय को खिलाओ और शाम को एक रोटी कुत्ते को खिलाओ, एक महीना आप ये नियम पालन करो, जो आपकी इच्छा है पूरी हो जाए। तो एक महीने बाद वो वापस गई, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा साधु महात्मा आपने तो कहा था कुछ हुआ नहीं, तो साधु महात्मा ने कहा तुमने वो मैंने जो तुमको नियम दिया था उसका पालन किया? हाँ पालन किया, आपने कहा था ना सुबह एक रोटी गाय को खिलाओ, शाम को एक रोटी कुत्ते को खिलाओ, तो मैंने पालन किया, सुबह की रोटी मैं खा लेती, शाम की रोटी मैं पति को खिलाती। तो अब देखिए नियम क्या बताया था, और किया क्या। तो वैसे ही धुंधुली ने क्या किया कि वो गाय को खिला दिया। अब वो डर गई कि जब मेरे पति को पता चलेगा क्योंकि अब उनको तो इतना विश्वास हो साधु महात्मा के ऊपर, तो गर्भवती तो होना होगा ना मुझे। तो अपनी बहन, ये धुंधुली की एक बहन जो उस समय गर्भवती थी, तो इसने ये एक आइडिया लगाया कि उसका जो बच्चा होगा वो मैं गोद ले लूंगी। तो बहन को बुलाया और सब पूरा उसको प्लान बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो बहन ने पूछा, लेकिन फिर तुम 9 महीने तुम कैसे बताओगे कि तुम गर्भवती हो? तो वो हर महीने यहां पर तकिया बांध बांध कर, कपड़े बांध बांध कर पेट को बड़ा करती। तो ये जो पति, तो वहां से वो पति भी, उसने कोई जांच पड़ताल की नहीं, वो देख रहा था कि हाँ अभी शिशु 1 महीने का हो रहा है, 2 महीने का हो रहा है, वो तकिए का साइज बढ़ते जा रहा है, तो उसको लग रहा है। तो वो भी पंडित तो था लेकिन थोड़ा पोंगा पंडित था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 9 महीने बाद अब हुआ क्या कि 3 महीने में वो जो गाय को फल खिलाया था वो तो गर्भवती हो गई 3 महीने में, और पूरे गांव में खबर फैली कि उस गाय ने एक मनुष्य को पैदा किया। तो वो जो एकदम सोने जैसे चमकता हुआ ये बालक, परंतु उसके जो कान थे वो गाय के तरह थे, इसलिए आत्मदेव ने नाम दिया गोकर्ण। परंतु दिखने में इतना सुंदर और व्यवहार में इतना सुशील ये बालक, क्योंकि ये उस दिव्य फल का फल था। तो अब वो तो पैदा हुआ यहां पर, अब ये धुंधली की जो बहन, इसने अपना शिशु लाकर धुंधली को दिया, तो इसका नाम पड़ा धुंधुकारी। ये नाम शायद आपने सुना होगा भागवत महात्म्य में, धुंधुकारी ये बना। तो ये पूरा विपरीत, इसके अंदर सारे दुर्गुण और सब प्रकार की चोरियां, मक्कारी, खेलते खेलते शिष्यों को मार डालता था ये बचपन में। और काम क्या करता था, हालांकि आत्मदेव जैसे ब्राह्मण के घर पे रहता, परंतु स्मशान भूमि में जाके मृत शरीरों को जलाया करता था, ये सब काम करता था। तो सब प्रकार के कुकर्म, तो आत्मदेव इतना परेशान, तो वो गोकर्ण से सलाह लेते थे कि मैं क्या करूं। तो गोकर्ण, क्योंकि वो ऐसे दिव्य बालक पैदा हुए, तो गोकर्ण ने इनको कहा कि देखिए, आपको उन सन्यासी ने कहा था कि आपके ललाट में संतान नहीं है, आपने जबरदस्ती उनसे ये आशीर्वाद मांगा, इसलिए अभी आपको साक्षात्कार हो जाना चाहिए, अभी आप जाइए घर छोड़कर आप सन्यास लीजिए। तो आत्मदेव वो घर छोड़कर उन्होंने सन्यास लिया, और फिर गोकर्ण ने उनको कहा कि आप केवल भागवत का 10वां स्कंद पढ़िए अपने आप को अब शुद्ध करने के लिए। अब इस बीच गोकर्ण वो भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि वो ऐसे भाई के साथ कहां रहना चाहते थे, कोई नहीं रहना चाहता था। तो धीरे धीरे धुंधुली जो मां थी वो भी गुजर गई वृद्धावस्था के वजह से, अब धुंधुकारी अकेला इस घर में। तो हर प्रकार के कुकर्म वो किया करता था। तो एक दिन इस धुंधुकारी ने क्या किया, ये कुछ 5 उल्टा स्त्रियों को लेकर आया इस घर में, और इन स्त्रियों ने जब देखा कि ये धुंधुकारी के पास इतना धन, क्योंकि वो धन इनके पिता का भी था और ये लूट मार कर कर भी धन यहां वहां से लाया करता था, तो इन स्त्रियों ने सोचा कि ये धुंधुकारी एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, और जब भी ये पकड़ा जाएगा तो हम लोग अवश्य ही इसके साथ पकड़े जाएंगे। और इसके पास इतना धन है यहां पर, उन्हें नहीं पता था कि इसके पास इतना धन घर पर है, तो क्यों ना इसे खत्म कर दें और ये धन ले जाएं, ताकि हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और धन भी मिल जाएगा हमें, और फिर इसके साथ कोई रहने की जरूरत नहीं। तो इसे नशा वगैरह कराया इस धुंधकारी को, और इसे मारने की कोशिश करी इन पांच स्त्रियों ने। वो मर नहीं रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि जलती हुई अंगीठी से वो कोयला लिया और इसके मुंह में धसाया, और इस प्रकार से नृशंस तरीके से इस धुंधकारी को उसका कत्ल कर दिया। अब इसके शरीर का क्या करें, इसके देह का क्या करें, तो उसी घर में दफना दिया। अब जला तो नहीं सकते, क्योंकि जलाने के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा, तो वहीं दफना दिया। तो अब वहां के गांव वाले देखने लगे, एक महीना, दो महीना, तीन महीना बीता, ये धुंधकारी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूछा इन स्त्रियों से कि ये भाई कहां गया धुंधकारी, तो ये लोग कहने लगे यहां वहां पता नहीं घूमता रहता है, पैसों के चक्कर में गया होगा कहीं पे और किसी को लूटने के लिए। तो गोकर्ण वो जहां पर तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो उनकी दिव्य शक्ति से उन्हें पता चल गया कि उनका भाई जीवित नहीं है। तो उन्होंने गया में जाकर श्राद्ध भी कर दिया अपने भाई के लिए, और फिर वो जब लौटे अपने घर, तो रात्रि के समय जब वो सोने जा रहे थे तो उन्हें आवाजें सुनाई दी। अब क्या हुआ था, ये धुंधकारी ये प्रेत बन गया था। तो इसे इस प्रकार से जब मारा गया, कोई इसके अंतिम विधि नहीं हुई थी, वहां पर दफनाया गया था, तो ये प्रेत योनि में चला गया था। तो ये एक भैंसे के रूप में आकर वो आवाजें करने लगा। तो गोकर्ण इनको समझ में नहीं आया, अब इनको केवल उनकी दिव्य शक्ति से ये पता चला था कि ये अब जीवित नहीं, परंतु ये नहीं उन्हें पता था कि ये इसी घर में इसका कत्ल हुआ और इसको दफनाया गया और ये प्रेत योनि में है। तो जब उन्होंने अपने कमंडलू से गंगा जल छिड़का, तब धुंधकारी बोलने लायक बना, और फिर उसने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, और मुझे उन पांच उल्टा स्त्रियों ने मेरा कत्ल किया और मुझे यहां पर दफना दिया, अब मैं प्रेत योनि में हूं, कृपा करके मुझे बचाओ। तो गोकर्ण उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे मैं गया में जाके मैंने श्राद्ध किया उसके बावजूद इसका उद्धार नहीं हुआ है। तो वहां के जितने विद्वान ब्राह्मण, उन सबको बुलाया, उन सबको बताया कि ऐसे ऐसे ये प्रेत योनि में मेरा भाई चला गया धुंधकारी, अब क्या किया जाए, मैं तो गया में श्राद्ध भी कर आया। तो ये ब्राह्मणों ने कहा कि गया में जिसका श्राद्ध हुआ है उसका भी यदि उद्धार नहीं हुआ तो कहीं पे उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ऊंचा माना जाता है गया में जाकर श्राद्ध करना, तो यदि वहां पर इसका कुछ हो नहीं सका है तो कुछ नहीं हो सकता इसका। तो गोकर्ण परेशान, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई तो उपाय होगा। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप सूर्य की पूजा कीजिए और सूर्य देव से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है उपाय आपके भाई के उद्धार का। तो दूसरे दिन उन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया, और सूर्यदेव वो जब प्रकट हुए तो उन्होंने गोकर्ण से कहा, और सबके सामने, पूरे उस गांव के सामने सूर्यदेव ने गोकर्ण से कहा कि यदि तुम्हारे भाई धुंधकारी का उद्धार तुम्हें कराना है उस प्रेत योनि से, तो तुम्हें भागवत कथा करानी होगी। और सूर्यदेव ये आदेश देकर अंतर्धान हुए, और फिर गोकर्ण उन्होंने भागवत कथा उनके गांव में आयोजित की, 7 दिन की भागवत सप्ताह। तो ये जो भागवत सप्ताह का जो ट्रेंड है ये यहां से शुरू है। तो 7 दिन की भागवत सप्ताह और विशेष रूप से ये भागवत सप्ताह गोकर अपने धुंधुकारी के उद्धार के लिए की थी। तो अब ये खबर फैल गई कि सूर्यदेव ने आदेश दिया है, तो पूरा गांव, जितने सारे गांव में विद्वान, जो भी अलग अलग वर्ण के सारे तबके के लोग वहां पर पहुंचे, लूले लंगड़े अनपढ़ गंवार सभी पहुंच गए भागवत कथा सुनने के लिए, गोकर्ण सुनाने वाले हैं। तो अब जब भागवत शुरू होने वाली थी ये कथा, तब फिर मंत्रोच्चारण द्वारा अब धुंधुकारी को लाया जाए, क्योंकि वो प्रेत योनि में किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि ये कहां पर कैसे है। तो फिर धुंधुकारी वो वहां पर प्रकट हुआ और वो एक बांस के अंदर गया, बांबू के अंदर बैठकर उसने कथा सुनी, प्रेत योनि लेकिन बांबू के अंदर जाकर कथा सुनी। और इस बांबू में 7 गांठ थी, तो हर दिन की भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात एक एक गांठ खुलती। ऐसे करकर 7 दिन की कथा जब पूरी हुई तो 7 गांठ खुली, और जब 7 गांठ खुली तो धुंधुकारी के लिए वैकुंठ विमान आया, और वैकुंठ विमान में बैठकर धुंधुकारी सबके सामने, ये पूरे गांव गोकर्ण इन सब के सामने धुंधुकारी गया वैकुंठ धाम। तो जब ये वैकुंठ विमान आया और विष्णुदूत आए, तो गोकर्ण उनके मन में एक प्रश्न उठा, तो उन्होंने जाते जाते विष्णु दूतों से ये प्रश्न पूछा कि 7 दिन की कथा ये पूरा गांव सुना, परंतु वैकुंठ विमान केवल धुंधुकारी के लिए क्यों आया। तब उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ध्यान से यदि किसी ने कथा सुनी तो वो धुंधुकारी ने सुनी, बाकी वो सब अपना कैजुअली कथा सुन रहे थे, कोई अपना टिफिन लाया था बीच बीच में वो खा रहा था, कोई डुलकियां मार रहा था। तो यहां पर सिद्ध होता है कि भागवत कथा चल रही हो, हम भागवत कथा में बैठे हो सकता है वैकुंठ विमान और किसी को ले जाए हमारे सामने और हम अपना व्हाट्सएप चेक करते रह जाए। तो ये सत्य घटना है कि विष्णु दूतों ने गोकर्ण से कहा कि केवल धुंधुकारी ने जो भागवत का श्रवण किया, श्रवण के साथ साथ उसने मनन किया, ये बात उन्होंने कही, श्रवण के साथ साथ उसने मनन किया और ऐसी तीव्रता से उस बांस में बैठकर उसने जो श्रवण किया है, ऐसी तीव्रता से, जब तक वैसी तीव्रता श्रवण में नहीं आती तब तक भागवत श्रवण या भागवत से उद्धार वो कदापि संभव नहीं। तो गोकर्ण फिर उन्होंने फिर से दूसरी बार सावन के महीने में उन्होंने फिर से भागवत कथा रखी और सबको बताया कि विष्णुदूत ये कहकर गए हैं। तो अब सब तीव्रता से, जैसे धुंधुकारी ने श्रवण किया वैसी तीव्रता से उन्होंने सबने श्रवण किया और अब सबके लिए वैकुंठ विमान आया, पूरा गांव का गांव वो वैकुंठ विमान में बैठ कर गया और साक्षात गोलोक बिहारी वो आए गोकर्ण को लेकर गए, जो कि जिन्होंने भागवत सुनाई। तो ये है श्रीमद् भागवतम का महात्म्य। तो हमारे आचार्य ये धुंधुकारी की जो कथा है इसे सुनाते हुए अपनी टीका देते हैं कि कलयुग के जो जीव हैं, अब ये उनकी टीका है, कलयुग के जो जीव हैं वो सब प्रेतों के तरह हैं, भूत प्रेत की तरह। भूत प्रेत की परिभाषा क्या होती है? भूत प्रेत केवल जो ये सिनेमा में दिखाते हैं डरावने दिखने वाले, नहीं नहीं, भूत प्रेत वो होते हैं बेचारे, उनको बेचारा बताया गया है शास्त्रों में, कि उनके अंदर ऐसी इच्छाएं जैसे कि साधारण किसी भी भौतिकतावादी मनुष्य की इच्छाएं होती हैं वैसे, और उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा तीव्र भौतिक इच्छाएं उस प्रेत की होती हैं। इच्छाएं हैं इतनी प्रबल, परंतु इच्छा पूरी करने के लिए कोई साधन नहीं। जैसे मान लो कि किसी को भूख लगी है और खाद्य पदार्थ भी है सामने, जो भी खिचड़ी है सामने, लेकिन उस खिचड़ी को खाने के लिए जिह्वा ही नहीं है, मुंह ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, और खिचड़ी सामने उसे ललचा रही है। तो भूत प्रेत उस प्रकार की योनि है कि जिनके अंदर ये सारी इच्छाएं हैं परंतु शरीर नहीं है उन इच्छाओं का भोग करने के लिए। तो कलयुग में ये बताया गया है कि कलयुग के जो जीव हैं वो ऐसी भौतिक इच्छा रखते हैं कि वो उनकी भौतिक इच्छा पूरी कभी नहीं होने वाली, जैसे कि भूत प्रेत की भौतिक इच्छा। इसलिए कलयुग के जीवों को भूत प्रेत बताया है। मतलब हम सबको। और जब तक हम धुंधुकारी ने जैसे तीव्रता से श्रवण किया, जब तक हम वैसे श्रवण नहीं करेंगे, तब तक यहां पर जन्म जन्मांतर इन अलग अलग योनियों में, परंतु विशेष रूप से जो योनि बताई है प्रेत योनि, उसी के अंदर वो सिद्धांत बताया है कि उसी के अंदर हमारा भ्रमण चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए यहां पर भगवान ने जो श्रीमद् भागवत भगवद गीता विशेष रूप से ग्रंथों के रूप में अपनी सांत्वना दी है हमें, जब तक कि हम इसका लाभ नहीं उठाएंगे तब तक हम चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं अर्पित कर लें, परंतु भगवान की ओर से वो सांत्वना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, हमारी प्रार्थना और उनकी सांत्वना, ये पूरा नहीं होगा। अब हमने ये मुद्दा लिया था कि एक तरफ है हमारी ख्वाहिशें और दूसरी तरफ है भगवान की योजनाएं, अर्थात Our wants and our needs। भगवान हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमारी आकांक्षाएं कुछ होती हैं अज्ञान के कारण, परंतु भगवान जैसे कि एक बहुत कृपालु पिता होता है, वो जानता है कि उसके संतान उसके पुत्र को क्या चाहिए, क्या जरूरत है, वो क्या चाहता है, वो पिता उस पर ध्यान नहीं देता, क्या आवश्यक है उसके लिए। तो आइए ये देखें, जब हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं हम हमारा प्लान लेकर जाते हैं, तो उसके बदले भगवान किस प्रकार की सांत्वना देते हैं। आई आस्क्ड कृष्ण फॉर स्ट्रेंथ, इन रिटर्न Krishna gave me difficulties and made me strong। तो हमें भगवान पक्का सशक्त कैसे बनाते हैं? हाँ, हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? ठीक है, मैं परेशानियां दूंगा और इन कठिनाइयों से जूझते हुए तुम्हें पक्का बनाऊंगा। जैसे कि मटका होता है, अब देखिए ये उदाहरण से समझ में आएगा कि कि एक कुम्हार जो है वो मटका कैसे बनाता है कि पहले वो मिट्टी के अंदर पानी डालता है और फिर वो जो उसका चरखा होता है उसके ऊपर जब वो मटका बनाना प्रारंभ करता है मिट्टी और पानी की सहायता से, तो जब मटका पूरा ढल जाता है उस शेप में, उसके पश्चात उस मटके को अब वो अग्नि में डालता है, पहले पानी और फिर अग्नि। यदि अग्नि से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्योरिंग, तो जब तक वो अग्नि से नहीं वो मटका गुजरता तब तक वो पक्का नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान भी उस कुंभार के समान है। हाँ, हमें पानी देते हैं, पानी अर्थात पानी जो ठीक विपरीत है अग्नि के, तो जो जो आवश्यक है हमारे उद्धार के लिए, हमारे भरण पोषण के लिए, वो सब देते हैं। उसके साथ साथ हमें पक्का करने के लिए भगवान, क्या जो हमने कॉस्मिक प्लान और इंडिविजुअल प्लान देखा, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधि आत्मिक, ये सारे क्लेश। सो आई आस्क्ड कृष्णा फॉर स्ट्रेंथ इंस्टेड व्हाट कृष्णा डिड, कृष्णा गेव मी डिफिकल्टीज एंड मेड मी स्ट्रांग। आई आस्क्ड कृष्णा फॉर विजडम एंड कृष्णा गेव मी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। कैसे समझ में आता है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि विकसित हुई है कि नहीं? जैसे आजकल एग्जाम टाइम चल रहा है ना, हम सब परीक्षा में बैठे हैं, विशेष रूप से गणित, मैथमेटिक्स, उसमें क्या बोला जाता है, प्रॉब्लम। क्या बोला बताया जाता है, प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। और जिसने वो प्रॉब्लम्स बखूबी सॉल्व किए तो क्या होता है, ये निर्धारित होता है बुद्धि बहुत है, इसके अंदर बुद्धि बहुत है। सो व्हेनेवर कृष्णा इज पुटिंग अस इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, अंडरस्टैंड दैट कृष्णा वांट्स एवरीवन टू नो हाउ वाइज वी आर। अच्छा लगता है ना पढ़ने में। Then I asked Krishna for courage. Instead, Krishna gave me dangers to overcome. कि ऐसी ऐसी चुनौतियां, और उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे अंदर हिम्मत कितनी है, करेज अर्थात हिम्मत कितनी है, वो बाहर आती है। I asked Krishna for favors. And Krishna gave me opportunities to make things turn favorable for me. तो कई बार ये सब सुन के हमको लगता है इरिटेट होते होंगे, अरे क्या जो मैं मांगता हूं वो क्यों नहीं दे रहे सीधा सीधा, ये घुमा फिरा के। क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, मटके को पक्का कर रहे हैं। I asked Krishna for love, and Krishna gave me troubled people to help. कि जब दूसरों को जाकर तुम प्रेम बांटोगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर प्रेम मैं भरूंगा। एंड फाइनली आई रिसीव्ड नथिंग आई वांटेड एंड कृष्णा गेव मी एवरीथिंग आई नीडेड। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भगवान के जो सांत्वना का प्लान है वो बहुत विशेष है, और विशेष रूप से भगवान कृष्ण जब सांत्वना देते हैं अपने भक्तों को, तो भगवान कृष्ण सांत्वना को बहुत ही स्पेशल तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो है स्पेशल और उनके भक्त स्पेशल, उनकी भक्ति स्पेशल है, तो सब कुछ उनके विषय में स्पेशल होता है। तो साइंस बिहाइंड नीमेल्स, अब इसे ध्यान से पढ़िए, जो हमने ईमेल नीमेल की बात करी थी। If Lord Krishna answers your prayers, nimel, that means he is increasing your faith. If he delays to answer, that means he is teaching you patience. If he doesn't answer your prayers, that means he knows that you can handle it. तीन चीजें होंगी जब हम प्रार्थना अर्पित करते हैं भगवान के समक्ष, या तो भगवान तुरंत पूरा कर देंगे, या तो देर से करेंगे, या नहीं करेंगे। तो तीनों स्थितियों में हमें क्या समझ लेना चाहिए कि भगवान सोच समझ कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, और उनकी नियत हमारे लिए नेक है। भगवान नेक नियत रखते हैं, हमारी नियत यहां वहां बिगड़ती रहती है, परंतु भगवान की नियत कभी बिगड़ती नहीं। कोई घुस नहीं दे सकता उनको और उनकी नियत बिगाड़ नहीं सकता। इट इज सो फनी व्हेन वी आस्क गॉड टू चेंज आवर सिचुएशन, नॉट नोइंग दैट ही पुट अस इन दैट सिचुएशन टू चेंज अस। भगवान मेरी परिस्थिति बदल दो, मेरी परिस्थिति बदल दो, परिस्थिति बदल दो। तो हम परिस्थिति परिस्थिति कितना बदलना चाहते हैं, मुझे बदसूरत से सुंदर बना दो, मुझे गरीब से धनवान बना दो, मुझे अनपढ़ गंवार से मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दो, मुझे ये है ना, परिस्थिति परिस्थिति बदलना है। और होता क्या है, हम इतना परिस्थिति बदलने के पीछे दिन रात दौड़ धूप करते रहते हैं, भागते फिरते हैं। परिस्थिति हमारी बदलनी चाहिए, भारत की परिस्थिति बदलो, हमारी मांगे पूरी करो, भारत की परिस्थिति बदलो, बहुत नारे लगाए जा रहे। तो यहां पर बहुत सुंदर ये सिद्धांत है, ध्यान से पढ़िए। इस सिद्धांत को यदि हमने अपने जीवन में अपना लिया, इसे कहेंगे कलयुग का शांति सूत्र। यह है कलयुग का शांति सूत्र। यदि परिस्थिति न बदले, और अक्सर होगा 99% हमारी परिस्थितियां गलत तरीके से बदलेंगी, प्रतिकूल तरीके से बदलेंगी। तो यहां पर क्या बताया गया है कि जब परिस्थिति न बदले तो क्या बदलो, अपनी मनस्थिति को बदलो। तो इस सिद्धांत को हम थोड़ा सा विस्तार से अब चर्चा करेंगे कि ये जो परिस्थिति और मनस्थिति, इन दोनों को कैसे हम शास्त्र के आधार पर समझें। तो सबसे पहले हम इस सिद्धांत को लेंगे कि परिस्थिति के वजह से हमारी मनस्थिति पे क्या प्रभाव होता है। देखिए, हम यदि संक्षिप्त रूप में हमारे मनुष्य जीवन को समझने जाएं, तो हमारा मनुष्य जीवन संक्षिप्त रूप में इन दो वस्तुओं से बना हुआ है, हमारी परिस्थिति और हमारी मनस्थिति। पूरा मनुष्य साम्राज्य सब और आप देखो तो यही सब कुछ चल रहा है कि हमारी मनस्थिति, मनस्थिति के आधार पर परिस्थिति, और परिस्थिति के आधार पर मनस्थिति, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट काम कर रहे हैं, परिस्थिति और मनस्थिति। तो सबसे पहले हम ये सिद्धांत लेंगे कि परिस्थिति का प्रभाव मनस्थिति पर कैसे पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम शरीर को लें तो शारीरिक स्वास्थ्य या शारीरिक बीमारी, अब हम हॉस्पिटल में जाएं, हमारे सारे रिपोर्ट्स चेक कराएं, ब्लड ये वो इत्यादि सब कुछ, कोलेस्ट्रॉल शुगर बीपी सब कुछ चेक कराएं, सब कुछ हो सकता है कि बोले हाँ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, हाँ लिखा रहता है ना, नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल नॉर्मल है। कब तक बार बार जाना पड़ता है। जैसे ये सच्ची घटना है, एक महिला ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की, ये महिला अचानक, इसे एक वहम हुआ कि इसके शरीर में कैंसर है। तो ये डॉक्टर के पास गई, कैंसर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को जाके इसने कहा कि मुझे लग रहा है कैंसर है। तो डॉक्टर ने सब चेक किए, कोई इसके अंदर कैंसर के सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं भाई तुम्हें नहीं है कैंसर, क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा? नहीं नहीं मुझे लग रहा। तो वो हर महीने जाती उस डॉक्टर के पास, वो हर महीने जाती कि मुझे लग रहा है मुझे कैंसर है, मुझे लग रहा है मुझे कैंसर, हर महीने जाती। 25 साल गई वो हर महीने उसी डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर शुरुआत में तो परेशान हुआ, लेकिन ये फीस दे रही थी, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई फीस मिल रही है। तो 25 साल डॉक्टर के पास जाने के पश्चात जब 25th ईयर के बाद का पहला महीना डॉक्टर ने टेस्ट किया तो कैंसर निकला, सच में कैंसर निकला। तो ये कहती है मैं बोलती थी, मैं बोलती थी मुझे कैंसर है। तो ये शरीर, जैसे शंकराचार्य, शंकराचार्य इन्होंने अपने पद में ये प्रश्न पूछा है इस शरीर के विषय में, कह शरीर, ये शरीर क्या है? तो इन्होंने शरीर की तुलना नरक से की है। अलग अलग नरकों का जो वर्णन है हमारे शास्त्रों में, तो उसमें से एक नरक है जिसका नाम है पूयह। ये पूयह नरक क्या है? इस नरक के अंदर केवल मांस, हड्डी, मज्जा, विष्ठा, रक्त, पस, इन सब से भरा हुआ ये नरक है जिसका नाम है पूयह। तो शंकराचार्य ने उस नरक का नाम लिया है कि यदि एक ऐसा नरक है यमलोक में जहां पर केवल ये सारी चीजें हैं, और इस शरीर को लो जो हम लोग इस पृथ्वी लोक पर ये शरीर लेकर जो इतना अभिमान कर घूमते रहते हैं, मेरा शरीर, हाँ मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, जो भी मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, ये अभिनेता, ये अभिनेत्री, हाँ सब लगा लगवा के घूम रहे हैं। फिर शंकराचार्य के अनुसार ये है क्या कि ये शरीर केवल वो पूहे नर्क के समान इन चीजों का कॉम्बिनेशन है। हाँ बस इसका पैकेजिंग ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से किया है कि लगता है कि स्वर्ग है, लगता है कि स्वर्ग है। तो मिस मेक्सिको आई, श्रील प्रभुपाद से पूछी कि स्वामी जी यू से दैट कृष्णा इज ऑल ब्यूटिफुल, व्हाई दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अगली। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको पूछा, यू आर मिस मेक्सिको, यू आर सो ब्यूटिफुल, व्हाई योर स्टूल इज नॉट ब्यूटिफुल? उसको क्राउन क्यों नहीं पहनाते? अब क्या बोले प्रभुपाद, एनी मोर क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चन। तो सुन के कैसा लगता है ना, लेकिन सच्चाई क्या है? ये शरीर शंकराचार्य कहते हैं इन सब से बना हुआ, जो सरकता रहे वो है शरीर, जो किस ओर सरकता रहे, वृद्धावस्था और मृत्यु की ओर सरकता रहे। तो अभी हमको लग रहा होगा मैं तो बैठा हूं पिछले एक घंटे से और मुझे बहुत अभ्यास है, जैसे ही हम पैदा हुए हैं ये हमारा शरीर सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है। किस दिशा में सरक रहा है? वृद्धावस्था की दिशा में और मृत्यु की दिशा में ये सरक रहा है। तो अब देखिए, जब कोई व्यक्ति स्वस्थ कुछ समय स्वास्थ्य का अनुभव करता है, अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करता है, तो उसकी मनस्थिति पर प्रभाव आता है, है ना? कई बार आप देखो कि कई ऐसे दिन होते हैं सुबह सुबह आपका पेट साफ हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे आज स्वर्ग में है आप। कई बार हम देखते हैं ब्रह्मचारी मंगल आरती में बहुत अच्छे से जब नाचते हैं, और अगर कोई बेचारा नहीं नाच रहा है इधर उधर बैठा हुआ है, बहुत से कारण होते हैं। तो कई ऐसे दिन होते हैं कि आपको कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं है, तो लगता है ना कि ऐसा दिन आपको अचानक स्फूर्ति आ रही है अंदर कहीं से, मनस्थिति आपकी बदल गई। तो अच्छे स्वास्थ्य से मनस्थिति पर प्रभाव पड़ता है, और वही दूसरे दिन सरदर्द हो जाए, कुछ पसंद नहीं आता, कोई जप करने की इच्छा नहीं, भगवान कितने भी सुंदर दर्शन हो, चाहे बीवी ने कितना भी अच्छा कुछ पकाया हो खाना, नहीं बताना पड़ता खाना, तो कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो जब बीमारी की अवस्था में मनस्थिति बदल जाती है। अब एक और हम परिस्थिति लें, मौसम, ठीक है हम जो भी है बीमार हो स्वस्थ हो, परंतु बाहर का मौसम, मौसम में परिवर्तन या स्थान में परिवर्तन हमारी मनस्थिति। जैसे मैं जब हर साल जाता हूं लंदन, तो वहां पर 12 महीने मौसम ऐसा रहता है, हर समय बादल घिरे हुए हैं, क्लाउडी, सूर्य की रोशनी बहुत कम दिखने को मिलती है, तो लोगों की कॉन्शियसनेस भी क्लाउडी होती है, वहां मौसम ऐसा है। और विशेष रूप से ये सर्दी के मौसम में तो वहां पर इतनी सर्दी गिरती है, अभी मैं जब वहां पर दिसंबर के महीने में था तो -4 डिग्रीज बर्फ गिर रही थी, कोई आप बाहर नहीं निकल सकते, इतनी सर्दी है, और घर पे किसी के साथ बनती नहीं है, बाहर सर्दी है, बाहर जा नहीं सकते, करोगे क्या इतने सर्दी में, घर पे इतनी गर्मी है, घर पे किसी के साथ बनती नहीं है, बाहर इतनी सर्दी है। तो मैक्सिमम सर्दियों के मौसम में यूनाइटेड किंगडम में सुइसाइड्स होते हैं, एंटी डिप्रेशन पिल्स मैक्सिमम सेल, सबसे ज्यादा उनका सेल होता है विंटर सीजन में यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि मौसम के बदलाव के वजह से मनस्थिति। यहां पे हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, परिस्थिति का प्रभाव मनस्थिति पर, स्थान, जैसे हम लोग आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब आप मंदिर में बैठते हो तो ये स्थान परिवर्तित हुआ है, वही जपमाला लेकर आप अपने घर पर बैठे हुए हो, जहां पर कहीं टीवी चल रहा है, कहीं रेडियो चल रहा है, कहीं कुछ पक रहा है, कहीं पड़ोसी जो हैं वो लोग गाली गलौज चल रहा है, भाइयों के काम चल रहे हैं, वहां पर जब उस माहौल में जब, और फिर जब आप मंदिर आते हो यहां पर सब, आप सुबह सुबह आओ, कई बार जो लोग मंगल आरती के पश्चात जप के समय आते हैं तो वो लोग देखते हैं सब लोग बैठे हुए हैं सर्कल में और अपनी माला झोली लिए, जैसे कि वो भंवरे भिन भिनाते रहते हैं, पूरे टेंपल हॉल में ऐसी आवाज है। हम जब ड्रेसिंग करते हैं तो अंदर हमको यहाँ पर जैसे आप लोग सब भंवरों की तरह मंडरा रहे हो टेंपल हॉल में, वैसी आवाज सुनाई देती है जप करने की, बहुत अच्छा लगता है वो सुनने, केवल भगवान का हरिनाम। तो ऐसे स्थान में जब आप साधना करते हो तो आपकी मनस्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मौसम और स्थान में जब बदलाव होता है तो मन स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। फिर संगति, आप चाहे मंदिर में हो परंतु मंदिर में यदि आपकी संगति ठीक नहीं है, अर्थात मंदिर में आने के पश्चात भी सांसारिक बातें आप करोगे यहां पर, तो क्या संगति आपने ली यहां पर? यहां पर भी आकर कि मोहल्ले में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हुआ, उसके बाल सफेद हो रहे हैं, इसके बाल उड़ रहे हैं, ये सारी चीजें। तो संगति, अब देखिए हम लोग सब अनुभव किए हैं कि साधना भक्ति में लगने से पहले हमारी संगति क्या थी और साधना भक्ति में लगने के पश्चात हम जिस संगति में हैं, तो संगति के वजह से हमारी मन स्थिति पर, जैसे एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर ये पास टाइम सुना रहे थे, अमेरिका में ये बात हुई कि वो लोग क्या क्या करते, रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन वैन में ये सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स बुक्स लेकर जाते, वैन को पार्क करते और फिर आसपास के मार्केट एरिया में जाकर वो लोग बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते। तो ऐसे ही ये सारे ब्रह्मचारी ये लोग पूरा बुक वैन अपनी लेकर गए, बुक वैन उन्होंने पार्क की और वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उन्होंने शाम तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और जब वो लौटे तो वैन गायब, उनकी वैन चोरी हो गई। तो अब ये लोग चिंतित कि अरे भाई, तो मंदिर की वैन और हमने तो सही जगह पर पार्क की थी, लॉक किया था, ये वैन गायब हो गई, चोरी हो गई लगता है। तो उन ब्रह्मचारी बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक ब्रह्मचारी ने कहा, नहीं आप लोग यहां पे रुको, मैं देखता हूं यहां पर, यहां आसपास कहीं पर होगा। तो आधे घंटे में वो वैन लेकर आ गया वो ब्रह्मचारी। तो बाकी ब्रह्मचारी पूछे कि भाई तुम्हें पता था कि वैन कहां पर है, तुम कैसे लेकर आए? तो इसने कहा कि मैं उसी गैंग का मेंबर था ब्रह्मचारी बनने से पहले। तो हम लोग मिलके काम क्या करते थे, तो मुझे पता था वो लोग ये कहां लेकर जाते हैं। तो मैंने, बोलते ना वशीला, तो उससे मैंने वो लेकर आ गया मैं। तो देखिए अब यही ब्रह्मचारी, इसकी संगति पहले क्या थी और अब भक्तों की संगति में उसने चुराई हुई वैन वापस लेकर आया, और वो भी भगवान की सेवा में जो इस्तेमाल की हुई। और फिर विषय वस्तु, तो विषय वस्तु में बदलाव, जैसे कि हम देखते हैं आजकल जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को आप देखो तो टेक्नोलॉजी के बदलाव के वजह से लोगों के मनस्थिति में किस प्रकार के बदलाव आए। जैसे इतने सारे वो कई बार वीडियोस निकलते हैं कि आजकल सेलफोन के वजह से, व्हाट्सएप के वजह से रिश्तों में दरार पड़ रही है। तो अब जैसे व्हाट्सएप आप लीजिए, जो इतना कॉमनली यूज होता है ये व्हाट्सएप, तो सुबह कोई बंदा उठता है, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले वो अपना व्हाट्सएप ऑन करता है। तो अगर उसका एक पूरा दिन देखो आप वो व्हाट्सएप के साथ, तो मनस्थिति पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो उसने व्हाट्सएप ऑन किया सुबह सुबह, उसको कोई भगवान से संबंधित उसको कोई शुभ विचार पढ़ने मिले, तो उसने जैसे ही शुभ विचार पढ़ा, अच्छा लगा, चलो सत्वगुण का समय है, सुबह 5 बज रहे हैं, एकदम शुभ विचार, संतवाणी सुनने मिल रही है, इस प्रकार से उसका उसकी मनस्थिति वैसे हुई। जैसे ही उसने वो दूसरे कांटेक्ट में देखा तो वहां पर अब आमिर खान ने अभी रिसेंटली क्या कहा है, वो सब शुरू हो गया। बॉलीवुड का न्यूज क्या चल रहा है वो सब शुरू हो गया, राजनीति में क्या चल रहा है वो सब शुरू हो गया। तो अब देखो यहां पर संतवाणी थी कुछ समय पहले, फिर अचानक राजनीति पे चला गया, फिर वहां से फिर क्रिकेट में क्या चल रहा है उसका न्यूज आ गया, कोई उसके ऊपर वीडियो आ गया, और कुछ नहीं तो किसी ने फोटो भेज दिया कि आज मैं नाश्ते में ये खा रहा हूं देख ले, उसको आपको चिढ़ा रहा है कि वो नाश्ते में क्या खा रहा है। अभी कहां से देखो, संतवाणी से राजनीति, राजनीति से क्रिकेट, क्रिकेट से नाश्ता, और ये सब कुछ चल रहा है। बीच में फिर कोई ऐसा समाचार आ जाएगा, कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि ये व्हाट्सएप मैसेज इतना लंबा चौड़ा, ये व्हाट्सएप मैसेज अगर आप 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपका जीवन सर्वनाश हो जाएगा, अगर आप 10 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो आपको जरूर कोई उपलब्धि प्राप्त होगी आधे घंटे में, तुरंत कीजिए, आप डर गए, ये करें कि नहीं करें, कौन 10 लोगों को करें। तो सोचो कि मनस्थिति कहां से कहां लेकर जा रही है आपको। एक घंटे में संतवाणी से लेकर आप चले गए आपका सर्वनाश बचाने के लिए, तो मुद्दा क्या है यहां पर, विषय वस्तु जब उसमें बदलाव होता है तो हमारी मनस्थिति पर उसका प्रभाव होता है। अब देखिए ये सारी चीजें बाह्य रूप से बदल रही हैं, जैसे ये अंतिम जो परिस्थिति है कि कोई भोग वस्तु प्राप्त करना खोना। अब ये देखिए, मान लीजिए कि किसी ने कोई कार खरीदी, तो कोई नई कार खरीदी है, अब जब तक वो कार शोरूम में थी मनस्थिति क्या थी उस बंदे की कि ये कार मेरी नहीं है। जैसे ही सारी रकम अदा कर दी, पेपर्स हो गए, ट्रांसफर हो गए, अब कार आपकी हो गई। अब हुआ क्या है कि कार जो है वो शोरूम से चलकर केवल आपके घर के सामने आकर खड़ी हुई। परिस्थिति में ये बदलाव, परंतु मनस्थिति में क्या बदलाव हुआ है, 24 घंटे अब ये मेरी है, हाँ ये अब शोरूम वालों की नहीं है, ये अब मेरी है। तो अब बार 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 अगर कोई बच्चे आसपास खेल रहे हैं, भाई पास में नहीं खेलना, खरोंच आ जाएगी, दूर दूर जाओ, उसको बार बार घिस घिस के साफ कर, मन स्थिति पे प्रभाव। अब वही चोरी हो जाए, खुदा ना खास चोरी हो जाए, अभी अभी खरीदी हुई कार चोरी हो गई, तो हुआ क्या है, वही कार जो 2 दिन पहले किसी और की थी शोरूम में, कोई और उसका मालिक था, 2 दिन बाद कोई और उसका मालिक हुआ, अब 2 दिन बाद कोई और उसको जबरदस्ती उसका मालिक बन गया है। लेकिन यहां पर अंदर जो चर्निंग चल रहा है, परिस्थिति का जो चर्निंग चल रहा है, भोग वस्तु का प्राप्त करना और खो देना, तो इसके अंदर आप देखो कि कैसे, हमने तो ये एक उदाहरण लिया, अब इसमें कितनी सारी वस्तुएं, चाहे वो छोटी से छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी से बड़ी वस्तु हो, उसके अंदर जब फेरबदल होता है तो हमारी मनस्थिति पर कितना प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और दूसरा सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत था कि परिस्थिति में फेरबदल से मनस्थिति पर प्रभाव, अब मनस्थिति में जब कुछ गड़बड़ होती है तो मनस्थिति कैसे परिस्थिति को बदलती है, यह दूसरा सिद्धांत है। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि, ये जो अनर्थ है हमारे अंदर, तो अब देखिए ध्रुव महाराज का उदाहरण, कि ध्रुव महाराज क्या हुआ, क्या था कि बस पिताजी ने अपने गोद में नहीं बिठा सके, सुरुचि ने जो भी कुछ कह दिया, तो ध्रुव महाराज को जो क्रोध आया, अब क्रोध उनके अंदर की मनस्थिति थी, बट उस मनस्थिति से उन्होंने किया क्या, पूरी बाहर की परिस्थिति बदल दी। इस हद तक कि पूरी सृष्टि का टेम्परेचर बढ़ गया उनके मनस्थिति के वजह से। तो अब व्यक्ति कोई क्रोधी स्वभाव का है, कोई बहुत कामुक व्यक्ति है, तो उसके अंदर के इन अनर्थों को लेकर वो अपने आसपास की पहली परिस्थितियों को बदलता है और फिर उसके प्रभाव से और परिस्थितियों को आगे आगे बदलता रहता है। जैसे कोई लोभी व्यक्ति है, वो संतुष्ट नहीं है, उसके दाल रोटी से संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक व्यक्ति एक साधु महात्मा से मिलने गया उनकी कुटिया में, तो साधु महात्मा को देखा, उसने ये धनवान व्यक्ति था, तो साधु महात्मा को देखा कि ये इतनी सी कुटिया में पूछता है कि भाई ये तुम इस कुटिया में कैसे रहते हो, यहां पे तो कुछ तुम्हारा कोई सामान ही नहीं, कोई फर्नीचर ही नहीं है तुम्हारा। तो साधु महात्मा इस व्यक्ति से पूछता है तुम्हारा फर्नीचर कहां है। तो उसने कहा अरे मैं तो एक मुसाफिर तुमसे मिलने आया हूं। तो साधु ने कहा मैं भी मुसाफिर हूं, जैसे एक मुसाफिर अपना फर्नीचर लेकर नहीं घूमता, वैसे साधु महात्मा ने कहा कि मैं भी इस संसार में एक मुसाफिर हूं, इसलिए मैं अपना फर्नीचर लेकर नहीं घूमता। और अगर कोई अपना फर्नीचर लेकर घूम रहा है सब जगह पर, तो आप क्या कहोगे उसे? मूर्ख व्यक्ति है। तो हम सब इस संसार में एक ऐसी परिस्थिति में डाले गए हैं कि यदि हम उस परिस्थिति को स्वीकार करें, जैसे कि हमने उदाहरण लिया उस आत्मदेव ब्राह्मण का, कि जिसकी मनस्थिति के वजह से उसने ऐसी परिस्थिति निर्माण की, तो ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये देखा जाता है विशेष रूप से कलयुग में, कोई व्यक्ति उदासी या मायूसी, मायूसी मतलब फ्रस्ट्रेशन, उदासी मतलब डिप्रेशन। तो कितने ऐसे केसेस कि उदासी या मायूसी के वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। आईआईटी में कितने ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पर उनको एक पर्टिकुलर केस हुआ था आईआईटी बॉम्बे में, जो व्यक्ति ने अटेम्प्ट किया, सुइसाइड अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट फेल हुआ वो अलग बात है, सुइसाइड अटेम्प्ट उसने किया। क्यों? क्योंकि सेकेंड रैंक आया उसका। सोचिए मनस्थिति से उसने अपनी परिस्थिति किस बद से कैसे बदतर बनाई। तो यहां पर ये दूसरा उदाहरण। अब देखिए अपशब्द और विश्वासघात, अधिकांश दाम्पत्य जीवन में जब तलाक होता है तो विश्वासघात अपशब्द इनके वजह से। तो अब किसी व्यक्ति को जब कोई अपशब्द कहता है तो हुआ क्या है? मतलब बाह्य रूप से ऐसा नहीं है कि उसका शरीर बदल गया है, लेकिन क्योंकि उस अपशब्द को सुनने के पश्चात सामने वाले व्यक्ति की मनस्थिति बदलती है। झगड़ा शुरू कैसे होता है दो लोगों के बीच में? मैं जब बॉम्बे में ट्रैवल करता था लोकल ट्रेन में, तो अक्सर वो लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होने की वजह से कभी धक्का लग रहा है यहां वहां, किसी का पैर किसी के पैर के ऊपर, तो अब ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है कि धक्का लगा है केवल, या फिर एक का किसी के ऊपर पैर लग गया, या कई बार कुछ भी टच नहीं होता है, केवल वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को घूरता रहता है या अपनी सीट से उठा नहीं है। एक नियम वहां पर ऐसा था कि अगर आप ग्रैंड रोड या चर्च गेट बैठे हो और वो ट्रेन जा रही है विरार या बोरीवली साइड, तो अभी एक डेढ़ घंटा लगेगा वहां पहुंचते पहुंचते। तो अगर कोई वहां पे सीट पकड़े हुआ है और बीच में कोई आए, वो दो बेंच के बीच में वो खड़ा हुआ है, तो वो देखता रहेगा तुम चर्च गेट से बैठे हुए हो, अंधेरी आ गया, तो उठो हमको भी बैठने दो। तो उधर ये नियम है कि आपको उठना है, दूसरों को बैठने के लिए देना है, उठे नहीं तो वो लोग ऐसे घूर के देखते हैं कि। और फिर शुरुआत कैसे होती है, एक ने किसी को कुछ कह दिया कि तो टिकट खरीद लिए तो क्या ट्रेन खरीद ली, तो ये कहता है भाई मैं भागकर बेंच मैंने पकड़ी है, ये मेरी सीट है, अभी कर ले क्या करना है, उठूंगा नहीं मैं, और फैल जाता है, बैठने भी नहीं दूंगा, चाहे तेरा दोस्त हो उसको भी नहीं बैठने दूंगा। वहां से शुरुआत होती है, फिर वो लोग खानदान पे पहुंच जाते हैं। अब उनके खानदान पता नहीं कौन से लोक में होंगे, उनको उधार लेते हैं बोगी के अंदर। मेरे पिताजी के बारे में बोला कैसे तुम, बोला कैसे नहीं, और क्या, जैसा पिता वैसा पुत्र, और क्या। तो वहां पर अब कई बार ये तो हम विनोद में कह रहे हैं, परंतु सीरियसली ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं कि अपशब्द का आदान प्रदान हुआ है और एक ने दूसरे को धक्का मार के ट्रेन से नीचे फेंक दिया। एक सोलोमन आइलैंड्स करकर है, अफ्रीका के वहां पर ही जगह है, तो वहां पर एक बहुत विचित्र प्रकार का नियम है उनका, कि वहां पर ये सोलोमन आइलैंड्स में एक ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, तो यो जाति के लोग वहां के जंगली जाति के लोग, ये ऐसे वृक्षों को वो काट नहीं सकते, इतने सख्त ये वृक्ष वहां के सोलोमन वृक्ष, इनको वो काट नहीं पाते कुल्हाड़ी से। परंतु एक तरीका उन्होंने जांच लिया है कि कैसे इन वृक्षों को गिराना है, तो वो लोग सब जिस वृक्ष को उनको गिराना होता था लकड़ी लेने के लिए, तो वो घेराव करते थे उस वृक्ष के चारों ओर और उस वृक्ष को अपशब्द बोलते, ये सच्ची बात है, उस वृक्ष को अपशब्द बोलते, और अपशब्द बोलने के वजह से धीरे धीरे वो वृक्ष जो है वो मायूस या उदास होकर अपनी पकड़ उसकी ढीली होती जड़ की, और धीरे धीरे वो वृक्ष नीचे गिर। पावर ऑफ यू नो अब्यूजिव वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। तो ये देखिए इसके वजह से कैसे परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। और फिर जब किसी का मान सम्मान या गुणगान हो, तो कैसे जब उसका उसकी झूठी प्रशंसा कोई करने लग जाए या सच्ची प्रशंसा भी करने लग जाए, तो धीरे धीरे उसको लगने लगता है कि हाँ, मतलब अब अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो सच्ची होगा ना। पहले जब कोई एक बोलता है तो हो सकता है कि कोई संशय आए कि एक व्यक्ति मेरा गुणगान कर रहा है, परंतु जब दो तीन चार इतने सारे लोग गुणगान करते हैं, इसलिए जब गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इतना मान सम्मान मिला है उसका जब अपमान होता है, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ फॉर एन ऑनरेबल पर्सन। तो अब बाह्य स्थिति कोई बदली नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको कोई बहुत जागीर मिल गई है, परंतु अनुभव किया होगा आपने भी कि जब कोई ऐसा दिन जहां पर आपको शुरुआत से लेके अंत तक उस पूरे दिन आपको सब लोग कुछ अच्छा बोल रहे हैं, आपका बर्थडे, अब बर्थडे के दिन तो सब अच्छा बोलेंगे कम से कम उस दिन, तो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, प्रभु जी हैप्पी बर्थडे, प्रभु जी में यू हैव कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, प्रभु जी दिस ब्लेसिंग दैट ब्लेसिंग, प्रभु जी तुसी ग्रेट हो, ये वो सब कुछ। हाँ, तो आप वो एक के बाद एक इतने सारे, हाँ, मैसेज पे मैसेज आप पढ़ रहे हो, तो फिर उस दिन आपको लगता है कि हाँ भाई, मैं सही पैदा हुआ हूं। इतने लोग बोल रहे हैं तो सही पैदा हुआ हूं मैं। अब देखिए ये मन कैसा है कि आपको 100 लोगों ने विश किया होगा, एक ने नहीं किया, तो वो 100 लोगों ने जो इतना लिखा है उस पर इतना गौर नहीं किया जाता, वो एक उसने क्यों नहीं किया, वो ईर्ष्या करता है, वो जानबूझ के उन्हें रात के 12 बजे तक उसने नहीं किया। तो अब देखिए वो जिस दिन बर्थडे उस दिन इतना सब कुछ गुणगान हुआ, दूसरे दिन फिर कोई पूछ नहीं रहा है, दूसरे दिन किसी और का बर्थडे फिर उसका चल रहा है, तो उसको भी आप पढ़ रहे हो, इसका गुणगान हो रहा है। लेकिन जिस दिन गुणगान होता है उस दिन उस व्यक्ति को कैसा लगता है कि हाँ मेरी प्रशंसा हुई, हाँ मेरा मान सम्मान हुआ, तो एकदम दिलेर हो जाता है वो, है ना। फिर चल भिखारी भी आ जाए, ले तू तू भी क्या याद करेगा, हाँ ले 10 का नोट ले तू, फिर भी 10 का नोट निकालता है खाली। और कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि आप सुबह सुबह निकले हैं ऑफिस के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए और बिना मतलब कोई कुत्ता भौंक रहा है आपके ऊपर, आपने उसके और उसके खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, और वो बस आपको आपको ही देख के भौंक रहा है, और बहुत से गुजर रहे हैं आपके आगे और आपके पीछे, लेकिन वो आपको देख के वो गेट से कूद कूद के यदि गेट ना होता तो चीरफाड़ आपका कर देता, वो ऐसे कूद रहा है आपको देख। तब देखिए एक कुत्ता है हाँ, और आपको देख के उसने भौंका है, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर होता है थोड़ा बहुत। आप ऑफिस में बैठे हो, मन में सोच रहे हो जो भी है भोका क्यों हाँ? मतलब मैंने उसका क्या बिगाड़ा, क्यों वो मेरे ऊपर ऐसा भोका। फिर आप अपने कपड़ों की ओर देखते हो, कपड़े तो ठीक है, प्रेस किए हुए पहने हुए कपड़े, क्यों भोका इसने, तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ा मूड ऑफ हो गया। फिर उसमें अगर बॉस आ जाए वो भी भौंकना शुरू कर दे, तो फिर धीरे धीरे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, आज कुत्ता भी भौंक रहा है, ये वाला भी भौंक रहा है। तो प्रभाव तो यहां पर क्या है कि वो जो मनस्थिति है, अब उस मनस्थिति को लेकर आसपास की जो परिस्थिति है हम उस पर प्रभाव डालना प्रारंभ करते हैं। इसलिए एक जापानी साइंटिस्ट ने उसने एक्सपेरिमेंट किया, दो उसने पानी के सैंपल लिए, तो एक पानी के सैंपल पर उसने एक महीना केवल जो बहुत अच्छे स्पिरिचुअल हिम्स हैं या स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस वो सर्कुलेट किए, उस वाइब्रेशन में वो रखा, और दूसरे जो पानी के सैंपल को ऐसे जगह पर रखा जहां पर अपशब्द कहे जाते हैं, ये सारी वाइब्रेशंस। तो इस जापानी साइंटिस्ट ने पता लगाया इसमें इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि एक महीने पश्चात जिस सैंपल में स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस वो सर्कुलेट किए गए थे तो उसके प्यूरिटी लेवल बढ़ गया उस पानी का, और ये दूसरा सैंपल इसका इंप्यूरिटी लेवल बढ़ गया, इसका प्रदूषण बढ़ गया। तो पॉइंट क्या है यहां पर कि शास्त्र हमें क्या सिखा रहे हैं, शास्त्र हमें ये सिखा रहे हैं कि कैसे जब हमारी परिस्थिति न बदले तो हमारी मनस्थिति को हमें बदलना है। तो हम इसके ऊपर हमारे अगले सत्र में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। एक आपको आज हम एक वीडियो दिखाने वाले थे परंतु हमारा परिस्थिति बदल गई यहाँ पे तो वो हम अगली बार दिखाएंगे। एक डॉक्टर हेगड़े है, उन्होंने बहुत सुंदर एक एनालिसिस किया है कि हमारे अंदर के जो सेल्स हैं बॉडी के, वो सेल्स कैसे हमारी मनस्थिति कॉन्शियसनेस के अनुसार हमसे डील करते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य है शारीरिक मानसिक वो सब कैसे निर्भर करता है हमारे कॉन्शियसनेस पर लेकर। तो उसको लेते हुए हम हमारे अगले बुधवार का सत्र प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता की
हरे कृष्णा। आप सब